Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
इसीलिए स्वार्थ, स्वार्थ मतलब स्व का अर्थ जानो, मैं क्या हूं। जब तक स्वार्थी नहीं बनोगे, अपने अर्थ को नहीं जानोगे, और इस शब्द का उल्टा अर्थ लेते रहोगे कि वो बड़ा स्वार्थी है, स्वार्थी का अर्थ दूसरों को धोखा देना नहीं होता, स्वार्थी का अर्थ होता है अपने में ही मस्त रहना, अपने ही अर्थ को जानना, उसको सार्थक कर देना। अगर हम वो नहीं कर रहे तो फिर जीवन के मकसद से और जीवन के सही आनंद से हम वंचित रह जाएं। जितने भी साधनाएं हैं जिनको साधना कहते, वो सब बहिर्मुखी है, बहिष्प्रज्ञा, और उसकी तुलना में, बहिष्प्रज्ञा की तुलना में कुछ और लोगों ने अंतः प्रज्ञा साधना बनाई कि अंदर डूबना है, अंदर डूबना, बाहर को छोड़ के अंदर डूबना। देखो, इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझ लो, अंदर डूबना है या बाहर की वृत्तियां। बाहर की वृत्तियों का मतलब है तीर्थ स्थानों पर घूमना, भंडारे करना, उत्सव करना, जन्माष्टमी मनाना, भजन संध्या आयोजन करना, कीर्तन करना, उसमें मन लगा हुआ है कि मैं ये कर रहा हूं, मंदिर बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, अस्पताल बनवाना, दान करना, कंबल बांटना, ये जो कुछ भी आप समझ, ये बाहर मुखी वृत्ति। आंखें बंद करके ध्यान में बैठना, भगवान का स्मरण करना, मस्त रहना, समाधि में जाना, ये करना, वो करना, इसको अंतर्मुखी वृत्ति कहते। अंतर्मुखी वृत्ति और बाहरमुखी वृत्ति, ये दो शब्द, इसी को ही अच्छा और बुरा कहते हैं। अपने अपने मानने वाले, जो बाहरमुखी हैं वो बाहर वाले को अच्छा कहते हैं और इनको बुरा कहते हैं जो अंतर्मुखी हैं, और जो अंतर्मुखी हैं वो अपने वाले को अच्छा कहते हैं, उसको बुरा कहते हैं। अच्छा और बुरा और कुछ नहीं है, अपनी अपनी मान्यता है। इसी को ही धर्म और अधर्म कहते हैं। अब ये शब्द जरा सुन के, वो अधार्मिक है, ये धार्मिक है, क्योंकि हम इन शब्दों के अभ्यस्त हो चुके हैं सुनने, ये हमें कुछ महत्वपूर्ण लगते हैं। कोई ये कहे ये बाहरमुखी है तो अच्छा नहीं लगेगा, एक बहुत धार्मिक है तो बड़ा अच्छा लगता है। धार्मिक का अर्थ ही बाहरमुखी है, धार्मिक का अर्थ यही तो है ना, कि तीर्थ स्थानों पर जा रहा है, भंडारे कर रहा है, और वो बनवा रहा है, अस्पताल बनवा रहा है, यही तो धार्मिक है और क्या है। अगर बाहरमुखी कहा तो लगता है कि जैसे मैं कोई बहुत लोग, हमने कहा ये बड़े धार्मिक है, वो भी खुश हो गए और सारे काम ठीक चल। और जो अंतर्मुखी हैं, अपने आप में मस्त रह रहे हैं, वो अधार्मिक क्या है, क्योंकि वो ना कभी मंदिर में जाते हैं, ना गुरुद्वारे में जा रहे हैं, ना तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, ना भंडारा में जा रहे हैं, ना उनके सामने कोई फोटो है भगवान की, ना कोई कुछ है, वो तो अपनी आंखें बंद करके अंदर डुबकी लगा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो अधार्मिक। अब बाहरमुखता, अंतर्मुखता, धार्मिक अधार्मिक, अच्छा या बुरा, जब तक इन दोनों में से कुछ भी बनने की कोशिश करोगे, इसी को ही आम बोलचाल की भाषा में, पौराणिक कथाओं में सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर कह दी, बंधे हुए दोनों ही हैं। एक अपने आप को वो बड़े अच्छे समझ रहे हैं और दूसरे अपने आप को, दोनों ही एक दूसरे, देखो जितने अच्छे लोग हैं वो उनको बुरा समझ रहे हैं, जितने बुरे हैं वो अच्छों को बुरा समझ रहे हैं, उनका अपना ग्रुप है, उनकी भी बहुत बड़ी एक ग्रुप है पूरे का पूरा, वो आपस में एक दूसरे को अच्छा मानते हैं और जितने आप अच्छा मानते हो उन्हें वो जान से मार देते हैं, उनके पैसे लूट लेते हैं, वो कहते हैं ये शोषण करता, चाहे आज की भाषा में आप आतंकवाद कहो, माओवादी कहो, वो कहो, कम्युनिस्ट कहो, कुछ भी ऐसी बातें करते हो, हमारा उनसे संबंध नहीं राजनीतिक शब्दावली से, लेकिन वो अपने को अच्छा ही समझते हैं कि पैसे वालों को खत्म करो क्योंकि ये शोषण कर रहे हैं गरीबों का। जो कोई कहेगा ये कि ये कर्मों का फल है उनको मारो, क्यों मारो उनको, क्योंकि वो अमीरों की पुष्टि कर रहे हैं, गरीबों को भी कह रहे हैं कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है इसलिए कुछ चारा नहीं, अमीरों को भी बता रहे हैं ये तुम्हारे कर्मों का फल है इसलिए बहुत अच्छा है, वो भी जस्टिफाइड और वो भी जस्टिफाइड। कभी कोई इस तरह से उठ नहीं पाएगा, विद्रोह नहीं कर पाएगा अमीरी के विरुद्ध, इसलिए पुरोहित वर्ग को पहले मारो, ऐसे सन्यासियों को, संतों को, ये उनका सिद्धांत है अपना, और वो अपनी जगह पर ठीक हो सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, जो जैसा सोच रहा है सो ठीक, क्योंकि जीवन का ये बिल्कुल सिद्धांत है कि जैसी जिसको देखे दुनिया वैसी उसे दिखाने दो, अच्छा और फिर बुरा क्या है इस बात को जाने दो, जो जैसा देख रहा है, जिसको जैसी दुनिया दिख रही है वो वैसा बोल रहा है, इस बात के लिए उससे उलझना कि ये ठीक नहीं वो नहीं, इस बात को जाने दो, दिखाने दो जो जैसा दिखला रहा है, आप अपने ढंग से देख रहे हो, अपने ढंग से समझा रहे हो, दूसरा अपने ढंग से देख रहा है, अपने ढंग से समझा रहा है, सारे कभी एक ढंग से समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, सांप सामने पड़ा हुआ है, रस्सी पड़ी हुई है, उसको कोई रस्सी, सांप देख रहा है, कोई डंडा देख रहा है, कोई भूसिद्र देख रहा है, अब कैसे समझा पाओगे आप रोशनी भी कर दो सबको रस्सी नजर आ जाए तब भी बीच में दो ऐसे होंगे कि नहीं ये रस्सी नहीं है तो सांप। तो जो मानसिक विकृतियां हैं इनका कोई चारा नहीं है, इसलिए उनमें उलझो नहीं, वहां तक रुको नहीं, आप अपने चिंतन में आगे बढ़ो। तो कुल मिलाकर बात केवल इतनी है, यहां उन्होंने जिस उपनिषद को आपने लिया, क्योंकि उपनिषद दो चार दिन की बात नहीं होती, ये जीवन भर की चर्चा होती, और हमारी परंपरा में, ऋषियों की परंपरा में एक एक उपनिषद का एक एक ऋषि होता था, उसने सारी उम्र वही किया और आगे अपने शिष्य को वही करवा जाता था, और पूरा जीवन उसी का ही चिंतन, उसी पर ही वो बोलता था, उसी को समझाता था, ऐसा नहीं है कि अभी उसने ये पकड़ लिया कल को दूसरा प्रश्न तीसरा, ऐसा नहीं। इस उपनिषद में जिसमें आपने ये बात की, इसमें उन्होंने कहा कि जो असलियत है वो न अंतः प्रज्ञ न बहिष् प्रज्ञ न उभयता प्रज्ञ, सच्चाई क्या है, अंतर्मुखी वाली या बाहरमुखी वाली, क्योंकि इसमें अंतर्मुखी को स्वप्न कहा, बाहरमुखी को जागृत कहा, और साथ में ये भी कह दिया कि सच्चाई से दोनों ही वंचित रह गए, क्योंकि जागते समय हमारी इच्छाएं हमारी कामनाएं हमें सच्चाई की ओर नहीं जाने देती, अपने और पराये की भावना हमें सच्चाई की ओर नहीं जाने देती, और स्वप्न में हमारी वासनाएं हमें सच्चाई की ओर नहीं जाने देती, और नींद में अज्ञान सच्चाई की ओर नहीं जाने देती, क्योंकि सच्चाई का संबंध ना वासनाओं से है ना कामनाओं से है ना अज्ञान से। ये शब्द सच्चाई को छू नहीं सकते। बहुत आसान और मोटे शब्दों में अगर आप समझो तो जिसको तत्व हम कहते हैं या बोलते हैं अस्तित्व का नाम है। अस्तित्व का मतलब है हवा, पानी, चांद, सितारे। हवा को कोई वासना के कारण नहीं चलती, हवा किसी कामना के कारण नहीं चलती कि अमीरों से कुछ मिलेगा मैं इसलिए इधर चली जाऊं, गरीबों से कुछ नहीं मिलेगा मैं उधर ना जाऊं। हवा की कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई अज्ञान नहीं उसमें। चांद में, तारों में, फूलों में, पानी में, झरनों में, पर्वतों में, समुद्र में, नदियों में, इन्हीं को ही अस्तित्व कहते हैं, इन्हीं को ही ब्रह्म कहते हैं। आप ऐसा थोड़ी देर के लिए यही मानो, क्योंकि इन सब में जिनके मैंने आपके सामने नाम लिए ना द्वैत है, ना जातीयता है, ना अपने प्राय की कोई भावना। देखने में विरोधी होते हुए भी आग और पानी इकट्ठे रह रहे हैं, देखो कितनी मजे की बात। बादल और हवाएं सब मतलब पूरे का पूरा इसी को अस्तित्व शब्द से एग्जिस्टेंस जीवन अलग। ये इनका कब शुरू हुए थे कोई आदि नहीं, कब तक चलेंगे इनका अंत कोई। इसलिए अगर आप सीधा ही इनसे संबंध जोड़ते हैं तो आप दुनिया की हर खुशी मिल गई आपको। इनसे संबंध जोड़ने का मतलब होता है ये हमारे प्रेरणा स्रोत बने, प्रेरणा इनसे ले। संबंध जोड़ने का अर्थ ये कुछ नहीं है कि इनसे रिश्तेदारियां होनी है हमारी, क्योंकि इनसे प्रेरणा लेना ये हमारे प्रेरणा के स्रोत, क्योंकि हमारा जीवन भी इन्हीं की वजह से। देखो हवा से जुड़े हुए नहीं हो और तो किससे जुड़े हो। एक सेकंड के लिए ऑक्सीजन का अगर मतलब नहीं तो कहानी खत्म है क्या? हम क्या इतने अपने आप को सोच रहे, किस ब्रह्म को ढूंढ रहे हो इधर? क्योंकि ब्रह्म न अंतः प्रज्ञा न महिष प्रज्ञा न उभयता प्रज्ञा न प्रज्ञान धनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञा। ये सारी बातें अस्तित्व पर, अस्तित्व का मतलब होता है, ये भी एक शब्द है जो लगातार कई दिन सुनते रहो तो समझ में आ जाता, लेकिन जनरल बात मोटे तौर पर मैं आपको जो बतला रहा हूं वो यही है कि जिनकी वजह से जीवन है, जहां जीवन होगा वहां मृत्यु होगी, जहां अस्तित्व होता है उसकी मौत नहीं। देखो मिट्टी कब बनी इसका कोई आदि नहीं है, मिट्टी कब तक रहेगी इसका कोई अंत नहीं, पानी कब बना इसका कोई आदि नहीं, पानी कब तक रहेगा इसका कोई अंत नहीं, पंचभूत कब बने इसका कोई आदि नहीं, पंचभूत कब तक रहेंगे इनका कोई अंत नहीं। लेकिन मेरा और आपका शरीर भी पंचभूतों से बना है, इसका आदि भी है इसका अंत भी। वो जो पहले मैं बात कर रहा था वो अस्तित्व है जो अपनी बात की ये जीवन जीवन का प्रारंभ भी या अंत भी। लेकिन अस्तित्व की दृष्टि से अगर अस्तित्व से हम जुड़ते हैं तो ना हमारा आदि है ना कोई परेशानी। लेकिन अगर जीवन को ही हम सत्य मान बैठते हैं तो फिर तो हमने इन इंद्रियों को ही पकड़ लिया। अगर हम एक पानी के बुद्धे को ही सत्य मान बैठे तो समुद्र से नजर चूक गए। समुद्र का अंत नहीं, समुद्र का आदि नहीं, बुद्धे का अंत भी है आदि भी। लेकिन वो पानी का बुद्धा अगर उसमें चेतना हो तो वो समुद्र की छाती पर नृत्य कर रहा। आप जो हैं, मैं जो हैं, उस परम चेतन की गोद में नृत्य कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती कह लो, इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है। कम वक्त खुदा होकर बंधा सा नजर आए। कैसा विचित्र बात, अस्तित्व से जुड़ा हुआ और फिर कोई परेशानी। तो जब तक आप इस चिंतन तर्क, ये जरूरी है, लेकिन ये जरूरी है भाव तक ले जाने के लिए। ये इन सब की सत्यता को स्थापित करने के लिए नहीं है, सत्यता अस्तित्व की ही है। और क्योंकि प्रत्येक वस्तु घटना कुछ भी देखो वो अस्तित्व का ही विवर्त है, इसलिए वो भी सत्य जैसी लगती है। लेकिन जो सचमुच में सत्य है उससे जुड़े रहें तो ऊपर का मजा लेते रहें, उसमें कोई हर्ज नहीं। सिनेमा घर की स्क्रीन का ध्यान रहे कि वो सफेद ही है, उस पर कोई चित्र नहीं कभी बना। कई फिल्में आई, कई गई, कई जली। लेकिन वो ज्यों का त्यों अस्तित्व वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हम सब पात्र समझ लो अपने आप को, कुछ बात समझने के लिए, कुछ कहने के लिए। हमारे से पहले भी कई आए चले गए, अब हम हैं, अपना अपना रोल करके जाना जरूर है। यहां कोई रुक सकता नहीं। इसको अगर स्वीकार कर लोगे कि जाना है तो नाचते हुए चलोगे, नहीं स्वीकार करोगे तो धक्के खाते हुए चलोगे, क्योंकि आपको आगे पहुंचाने वाले पीछे खड़ी है लाइन एक पूरी। इस वहम में न रहना। ये जिनको आप अपने कहते हैं ना, वो इतना कुछ ही अपना है कि ये आगे पहुंचा के छोड़े, नहीं तो कोई आगे पहुंचाने वाला म्यूनिसिपल कमेटी वाले आते या कोई और आते। अपने का इतना सा ही मतलब है कि ये पहुंचा आएंगे वहां तक। तो अगर हम सीधा उपनिषद के ऋषि जब एकांत में जंगलों में झीलों के किनारे पर्वतों के सौरम्य घाटियों में बैठकर जब बात करते हैं तो वो अस्तित्व से जुड़े हुए। उनका जो कोई भी वाक्य है उसमें रत्ती भर भी कहीं आपको धूल नजर नहीं आएगी, क्योंकि उस वातावरण में धूल होती ही नहीं। उन्होंने खरगोशों की, हिरणों की, मोरों की आंखें देखी हैं, उनको कभी वासनाएं नजर नहीं आई। वो आदमियों से मिले ही नहीं, वहां रहते थे। उनके पास अगर खरगोश भी आए हैं, चूहे भी आए हैं, मोर भी आए हैं, हिरण भी आए हैं, कोई कौवे भी आए हैं, तो उनको आज भी उन पक्षियों की आंखों को कभी देखो। अगर थोड़ा बहुत उनमें कुछ भय है तो हमें देख के ही होता है, बाकी कोई बात नहीं है। अब यहां उनका भी ग्रुप हो पूरा पक्षियों का, भय मिले उन्हें, यहां सुबह सुबह इधर समुद्र के किनारे पर कबूतर और कौए, उनको लोग कुछ खाने को देते हैं और झुंड के झुंड आते हैं, क्योंकि वहां उनकी मेजॉरिटी है, वो आदमी से डरते नहीं। वो आपस में देखो उनको वहां नृत्य करते हुए, आप हैरान रह जाओ। और जो विरोधी एक किस्म के, कभी आप सुन नहीं सकते, अंग्रेजी में एक मुहावरा है कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स डॉग्स का मतलब होता है दिन रात की लड़ाई, कुत्ते और बिल्ली आपस में ऐसे। यहां कुत्ते के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है, बाहर पूजा खाने को सब कुछ मिल रहा है, कुत्ते भी लेटे हुए हैं, बिल्ली भी वहीं बैठी हुई है, कौवा भी वहां बैठा हुआ। तो कुछ समुद्र की वजह भी हो सकती है, वरुण देवता की भी कृपा हो सकती है कि यहां उनमें वो वैर भाव की बात उतनी ना। तो जो लोग रहे ही बाहर ऐसे प्राकृतिक वातावरण में, उन्होंने जो ये निरूपण किया हुआ है, इनमें वासनाएं नहीं। जिन्होंने शहरों में बैठ के कविताएं लिखी हैं, जिन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते कि वो मीरा से भाव को छू सके कभी। कितना भी वो अपने आप को बढ़िया से बढ़िया बना लें, गीतकार बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये कथा, ये चर्चा जो हम कर रहे हैं, क्योंकि उस अनादि और अनंत की है, इस चर्चा का कोई अंत नहीं। जब तक चाहे करते रहें, कभी भी इसका अंत नहीं होगा। चांद निकल के छुप गया, क्षमा भी जल के बुझ गई, हुस्ने अजल की दास्तां किस्सा ना तमाम। हुस्ने अजल का मतलब है एटर्नल ब्यूटी, कभी भी पतन ना हो जिसका, ऐसा सौंदर्य उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। अब फिर जब कभी समय मिलेगा फिर आगे बात करेंगे। आज इसी के साथ विश्राम। ओम।